नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत शासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने युवाओं, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सिविल सेवकों से असाधारण गति से काम करने का आग्रह किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे, आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। झारखंड के बोकारो जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। पोप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद निधन। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 5वें कारोबारी सत्र में उछाल। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने वृद्धि वाले परिवर्तन से आगे बढ़कर प्रभावशाली परिवर्तन देखा है, क्योंकि सरकार देश में समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि समग्र विकास का मतलब है हर घर को स्वच्छ जल, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर उद्यमी को वित्तीय संसाधन और हर गांव को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने देश में युवाओं, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए असाधारण गति से काम करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके सपने अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं।
2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रशासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है।
पिछले 10 सालों में भारत ने कई ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव करके दिखाए हैं, उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छुआ है। भारत आज सिर्फ ग्रोथ की वजह से नहीं जाना जा रहा, बल्कि गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और इनोवेशन के बेंचमार्क्स आज भारत सेट कर रहा है। G20 प्रेसिडेंसी भी इसका एक उदाहरण है।
प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलते समय में वैश्विक चुनौतियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
तेजी से बदलते समय में हमें ग्लोबल चैलेंजेज पर भी गहरी नजर रखनी है। फूड, वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए ये बहुत बड़ा संकट है। लंबे समय से चल रहे संघर्षों के कारण कई देशों में हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। इसका असर लोगों पर पड़ता है, रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमें आगे बढ़ना होगा।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 2 ई-बुक भी जारी की। हमारे संवाददाता ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ लोक सेवकों से बातचीत की।
मैं रविशंकर शुक्ला, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सरायकेला खरसावां जिले। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड में समग्र विकास हेतु तथा 5 थीम आधारित योजनाओं के सम्यक क्रियान्वयन हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस कार्य को संपादित करने में जन भागीदारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के समुचित सहयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है।
मेरा नाम मोनिका रानी है, मैं जिला अधिकारी बहराइच हूँ। 2023 का जिले के संपूर्ण विकास की श्रेणी के अंतर्गत इन पुरस्कार दिया गया है, इसके लिए मैं अपनी संपूर्ण टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जो केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, इन सभी के अंतर्गत जनपद बहराइच ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा दिवस पर सभी लोक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोक सेवक राष्ट्र को उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रभावी शासन में नए मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जेद्दाह जाएंगे। 4 दशकों में सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र में किसी भारतीय नेता की ये पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एक कारखाने का दौरा करेंगे और वहां तैनात भारतीय कामगारों से बात करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बीच हो रही है। हाल के वर्षों में सऊदी अरब में भारतीय निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अगस्त 2023 तक लगभग 3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। ये निवेश निर्माण परियोजनाओं, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल सहित विविध क्षेत्रों में किया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत की कंपनियों और कॉरपोरेट समूहों ने सऊदी अरब में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। L&T, टाटा, विप्रो, TCS, TCIL, सापूर्जी एंड पोलोंजी, एयर इंडिया, गो एयर, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसे संगठनों ने सऊदी अरब में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंध और भी सुदृढ़ हुए हैं। सऊदी अरब के वर्ष 2030 के दृष्टिकोण के अनुरूप द्विपक्षीय सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आई है। वर्ष 2021 में सऊदी खेल मंत्रालय और भारत के आयुष मंत्रालय के बीच योग के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद से सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूती मिली है। भारतीय दूतावास नियमित रूप से योग कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव भी शामिल है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत और सऊदी अरब के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। जद्दा से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
शुरुआती 2 साल है बच्चे के जीवन में खास, इसी दौरान होता है दिमाग का अधिकतम विकास। देखे, सुने, जाने, समझे और बढ़ाए हाथ, बचपन में मिली सीख रहे जीवन भर उसके साथ। माँ की सेहत से जुड़े हैं बच्चे के तार, अच्छी शुरुआत का यही है आधार। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार अपनाएं, आयरन युक्त भोजन थाली में लाएं। जन्म के बाद 6 माह तक केवल स्तनपान, इसके बाद पूरक आहार का भी रखें ध्यान। जब शरीर रहेगा स्वस्थ तो सुंदर होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। वे आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस ने आज अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। उनका जयपुर और आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों के प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। इस यात्रा के दौरान इस वर्ष 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जारी भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही दोनों पक्ष आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की दूसरी डॉकिंग प्रक्रिया आज सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगले 2 सप्ताह में ऐसे और प्रयोग किए जाने की योजना है। भारत द्वारा छोड़े गए कुछ उपग्रहों को इस साल 16 जनवरी को पहली बार सफलतापूर्वक आपस में जोड़ा गया था और इन्हें 13 मार्च को सफलतापूर्वक अलग किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मामले को तत्काल सूचीबद्ध और निर्देश देने की मांग का उल्लेख जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष किया गया। याचिकाकर्ता ने अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती और संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने की मांग की। झारखंड में आज बोकारो के लुगु पहाड़ी इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि सुरक्षा बलों ने अब तक 8 माओवादियों के शव बरामद किए हैं। मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया गया है। ये मुठभेड़ लगभग 2 घंटे चली। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
बोकारो जिले के लुगु हिल्स में आज सुबह सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में शीर्ष 3 नक्सली, जिनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक, बिहार का अरविंद यादव उर्फ अविनाश दा और साहेबरान मांझी समेत 8 माओवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बल सभी संभावित माओवादी ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। DGP अनुराग गुप्ता ने झारखंड पुलिस की आत्मसमर्पण नीति के तहत माओवादियों को जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। आज बोकारो में हुए मुठभेड़ का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने अगले साल तक नक्सलवाद को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अमेरिका यात्रा के दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है। श्री पात्रा ने नेशनल हेराल्ड मामले में जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस की आलोचना की।
राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता और देशवासियों को भी कहना चाहता हूँ, दोज हु आर आउट ऑन बेल ऑफ 50,000 रुपीज, इफ दे फील दैट दे कैन डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ दिस ग्रेट डेमोक्रेसी By speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line.
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज वेटिकन सिटी में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे। पोप फ्रांसिस पहले लातिनी अमरीकी पोप थे और वे सर्वाधिक उम्र में पोप बनने वाले व्यक्ति भी थे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि रूस और यूक्रेन इस सप्ताह युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौता कर लेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक बार रूस और यूक्रेन समझौता कर लें तो दोनों ही अमरीका के साथ व्यापार करके खूब पैसा कमा सकेंगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिया था कि अगर कोई भी पक्ष बातचीत से पीछे हटता है तो अमरीका शांति समझौते के लिए मध्यस्थता करने के अपने प्रयासों को छोड़ सकता है। घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार 5वें कारोबारी सत्र में उछाल देखने को मिला। अब से कुछ देर पहले बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 953 अंक बढ़कर 79,506 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 303 अंक की वृद्धि के साथ 24,154 पर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण अवरुद्ध जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को पूरी तरह खुलने में 2 दिन लग सकते हैं। रामबन के उपायुक्त बशीर अल हक चौधरी के हवाले से हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि राजमार्ग पर कोई वाहन नहीं फंसा है। वहां फंसे सभी 140 वाहनों को सुरक्षित रूप से बनिहाल की ओर ले जाया गया है। रामबन सेक्टर में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण कल से राजमार्ग बंद है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2024-25 सत्र के लिए जारी अपनी अनुबंध सूची में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविन्द्र जडेजा को A+ श्रेणी में रखा है। श्रेयस अय्यर को B श्रेणी में और ईशान किशन को C श्रेणी में रखा गया है। IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोचिकित्सक डॉ राजेश सागर और मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन परिचर्चा में शामिल होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत शासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने युवाओं, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोक सेवकों से असाधारण गति से काम करने का आग्रह किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। झारखंड के बोकारो जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। पोप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद निधन। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 5वें कारोबारी सत्र में उछाल। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।